अरहम के बाद अरमान ने ज़ोया के साथ मनमानी की और करीब एक घंटे बाद वो भी उसे उसी हालत में छोड़कर चला गया। ज़ोया पहले से ही काफ़ी कमज़ोर थी और अब अरमान की मनमानी ने उसे ज़िंदा लाश बना दिया था। ज़ोया होश में होकर भी होश में नहीं थी। आखिर क्यों ऊपर वाले ने मुझे ज़िंदा रखा है, वो सोच रही थी। दो बार मैंने मरने की कोशिश की, फिर भी मैं नहीं मरी। ये दोनों साइको भाई मुझे दिन रात नोचते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, और मैं फिर भी जिंदा हूँ। उसकी रूह तो कब की मर चुकी है, फिर ये शरीर इन दोनों की मनमानी सहने के लिए क्यों जिंदा है, आखिर क्यों? ज़ोया बेजान सी पड़ी हुई अब यही सोच रही थी। दूसरी ओर वे दोनों भाई आराम से बैठकर साथ में रात का डिनर कर रहे थे, तभी वहां तेजा आ गया। अरमान ने तेजा से पूछा, बोलो क्या खबर है? तेजा, बॉस, राजवीर अपने गांव से यहाँ आया है अपनी माँ के साथ। उसकी माँ के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और सर उसके बाप दादा काफ़ी ज़मीन जायदाद छोड़कर गए हैं। वो बहुत पैसे वाला आदमी है और उसका कोई लफड़ा भी नहीं है। ओह, अरमान ने गहरी सांस ली और तेजा को जाने के लिए बोला, तुम जाओ यहाँ से। तेजा, ओके बॉस। अरहम ने कहा, भाई क्या सोच रहे हो? वेल ब्रो, कुछ नहीं, एक छोटा सा मैटर है, डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। ऐसा कहकर अरमान अपने कमरे में चला गया। राजवीर का बैकग्राउंड एकदम क्लीन था, पर न जाने क्यों वो राजवीर को लेकर परेशान सा हो गया था। वेल, फिर उसने सोचा शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है उसको लेकर। दूसरी ओर सकीना बी ने जैसे तैसे ज़ोया को खाना खिलाया, फिर उसके घाव पर दवाई लगाई और एक बार फिर पेन किलर के साथ स्लीपिंग पिल्स देकर उसे सुला दिया। ज़ोया के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सकीना बी नम आँखों से उसके सारे काम कर रही थी। फिर जब वो सो गई तो उसे कपड़ा उढ़ाकर वो चली गई। अगली सुबह राजवीर अरमान से मिलने उसके ऑफिस पहुंच चुका था, क्योंकि वो अब वहां 40% का पार्टनर था, तो अरमान के बाद राजवीर भी सबका बॉस था। जैसे ही राजवीर ऑफिस के अंदर गया तो सभी स्टाफ ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। राजवीर काफी खुश था, वो जानता था उसकी डिटेल्स निकलवा ली गई हैं, और राजवीर कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, वो माल और रुतबे में अरमान से कहीं ज्यादा था। कुल मिलाकर वो हर लिहाज से बेहतर था अरमान से। वेल, राजवीर सीधा अरमान से मिला और पेपर वगैरह की फॉर्मेलिटी कंप्लीट की और दोनों ने हाथ मिलाया। वेलकम टू द कंपनी मिस्टर राजवीर सिंघानिया, बदले में राजवीर ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरमान सर। ओ राजवीर, मुझे नहीं लगता हम दोनों के बीच ये आप जनाब वाली फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, आज से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे, अरमान ने खुशगवार लहजे में कहा। राजवीर ने भी हाँ में सर हिला दिया और दोनों हंस दिए। तभी अरमान बोला, ओह तो राजवीर, क्यों ना हम अपनी इस नई दोस्ती को आज रात सेलिब्रेट करें, बोलो क्या बोलते हो, अरमान ने खुशगवार लहजे में कहा। राजवीर तो यही चाहता था। राजवीर तुरंत बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक बढ़िया सी पार्टी करते हैं, बहुत मज़ा आएगा सर। अरमान ने कहा, अरे फिर सर बोला ना, नाम लो। ओ सॉरी सॉरी, अब इतनी जल्दी तो आदत नहीं जाएगी ना। वेल, आज रात की पार्टी के बाद शायद आदत चली जाए। सो अरमान ने पूछा, पार्टी कहाँ है, आई मीन लोकेशन क्या है? राजवीर ने कहा, सोचते हैं पार्टी कहाँ करें। अरमान ने कहा, यार मेरे घर के बारे में सोचना मत, मेरी माँ बेहद स्ट्रिक्ट है, वो तो मुझे सॉफ्ट ड्रिंक्स तक नहीं पीने देती। ऐसा कहकर राजवीर हंस दिया, वो चाहता था अरमान अपने घर पर पार्टी दे। वेल, मेरे घर में एक बेहद खूबसूरत गार्डन है, हम पार्टी वहीं करेंगे, अरमान ने कुछ सोचते हुए कहा। और पार्टी में केवल करीबी दोस्त ही इन्वाइटेड होंगे, ओके, क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़भाड़ पसंद नहीं, अरमान ने सपाट लहजे में कहा। राजवीर ने कहा, ओ ग्रेट, इसी बहाने आपकी फैमिली से भी मुलाकात हो जाएगी। फैमिली के नाम पर अरमान थोड़ा सकपका सा गया था। वेल, उसने टॉपिक चेंज करने के लिए तेजा को बुलाया। तेजा, तेजा। यस बॉस, आज रात हमारे गार्डन में पार्टी होगी, पूरी तैयारी करो, और याद रहे अरमान ठाकुर को किसी भी तरह की कोई कमी पसंद नहीं आती है, आगे तुम समझदार हो। तेजा ने हाँ में सर हिलाते हुए केबिन से बाहर निकल गया। अरमान का तेजा को ऐसे धमकी भरे अंदाज में ऑर्डर देना काफी सतर्क कर गया था। तभी राजवीर बोला, ओके ब्रो, शाम को मिलते हैं और धमाल करते हैं। ओ हाँ यस, और हाँ लोकेशन आपको मेरी सेक्रेटरी सेंड कर देगी, अरमान ने कहा। राजवीर सीधा अपने घर गया और आज रात की पार्टी की तैयारी शुरू करने लगा था। वो जानता था आज के बाद उसे कोई मौका नहीं मिलेगा अरमान के बारे में जानने का, और वो इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देगा। हल्की मुस्कान के साथ उसने अपने पास कुछ ज़रूरी सामान रखना शुरू कर दिया और इंतज़ार करने लगा आज रात का। दूसरी ओर ज़ोया दोपहर के करीब 2 बजे सोकर उठी। इस बीच सकीना भी उसे कितनी बार देखकर जा चुकी थी, वो इसी इंतज़ार में थी कि ज़ोया उठ जाए तो उसे कुछ खिला दूँ। ज़ोया उठ चुकी थी और खाली खाली नज़रों से अपने आसपास देखने लगी। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत निशान मौजूद थे, किसी हिस्से से हल्का हल्का खून निकल रहा था तो कहीं बड़े बड़े नीले निशान पड़ चुके थे। हाँ, उसके फेस की सूजन काफ़ी हद तक कम हो गई थी, पर उसकी आँखों और होंठों के पास के गहरे गहरे नीले निशान उसकी गोरी रंगत पर ऐसे थे जैसे सफ़ेद चमचमाते आसमान में काले काले बादल घेरा बना लेते हैं। सेम वही हाल ज़ोया का था। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी सकीना भी खाने की ट्रॉली लेकर उसके कमरे में आई। जोया ने एक नज़र उनको देखा और अपने आने वाले आंसू को अंदर ही रोक लिया और बोली, अम्मा खाना लगा दो। सकीना भी उसकी आवाज़ सुनते ही खाना लगाने लगी। तभी जोया ने पूछा, अम्मा क्या आपको पता है वो लड़की कौन है अक्सर जिसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है? अचानक उस लड़की का जिक्र सुनकर खाना निकालते हुए सकीना बी का हाथ थम सा गया और वो जोया को देखने लगी। बीबी हमें नहीं पता वो कौन है, और अगर अरमान साहब को पता चल गया कि हमने उस लड़की के बारे में कुछ भी बात की तो वो हमें जिंदा गाड़ देंगे। हमें माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता, और प्लीज़ मुझसे मत पूछिएगा उसके बारे में। और मैंने खाना लगा दिया है, आप खा लो क्योंकि अब मैं चलती हूँ, मुझे आज शाम की पार्टी की तैयारी करनी है। जोया ने हैरानी से पूछा, पार्टी? कैसी पार्टी? वो बीबी आज अरमान साहब ने अपने दोस्तों के लिए मेंशन के गार्डन में पार्टी रखी है और सभी को सख्त ऑर्डर दिया गया है। ये बेहद ज़रूरी पार्टी है उनके लिए, किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ओ, जोया ने हाँ में सर हिलाया जैसे उसे सब समझ आ गया हो। सकीना भी कमरे से जा चुकी थी। जोया को पता था अरमान और अरहम दोनों ही उस पर नज़र रखे हुए हैं। अब ये पार्टी इन दोनों साइको के लिए इतनी ज़रूरी है तो क्यों ना मैं भी इनकी कुछ मदद कर दूँ, उसने एक जहरीली स्माइल के साथ बोला और वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी।